जिसका विषय रहेगा सदा एकरस, अचल, अडोल, उधार मूर्त एवं उदाहरण मूर्त। सदा अचल, अडोल, एकरस, उधार मूर्त, उदाहरण मूर्त हमारे बीच आदरणीय दीदी जी आ चुके हैं। हम आपका अभिनंदन एक हाथ की ताली के द्वारा करेंगे और जो अभी हम क्लास करेंगे एक रस, अचल, अडोल, उद्धार मूर्त एवं उदाहरण मूर्त पर जो क्लास करेंगे उसी विषय पर हमारी आदरणीय बहन जी हमारे बीच रहेंगी, आपको योग के द्वारा उसका अभ्यास रियलाइजेशन कराएंगे। और अब हमारे बीच आदरणीय दीदी जी आ गए हैं। आप बाल्य अवस्था से ही मम्मा बाबा की पालना लिए हुए हैं, आपका पूरा परिवार यूं कहूं बाप दादा से मम्मा से पालना ली हुई है और उसके बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लगभग आज 50 वर्ष के लगभग हो गए आपको सेवाएं देते हुए। आपने देश विदेश में भी अपनी सेवाएं दी हैं, साथ साथ अभी जयपुर और उसके आसपास के लगभग 75-80 सेवा स्थान आप संभाल रहे हैं आदरणीय सुषमा दीदी जी। और विशेष आपका रुझान, ये कहूं रुचि का सब्जेक्ट कहूं, योग और ज्ञान की गहराई में जाना, योग की अनुभूति करना, तो आज हम सब के बीच में इसी योग की गहराई में हमें ले जाएंगी, कैसे अवस्था को हम अचल, अडोल, एकरस बनाएं और उसका अभ्यास करें। आदरणीय दीदी जी,
तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। बाबा के घर में तपस्या भूमि वरदान भूमि में आप सब विशेष आत्माओं को यहां आने का चांस मिला है। भाग्य विधाता बाबा के आप सब कितने भाग्यवान बच्चे हैं, महसूस करते हैं भाग्यवान है? कौन कौन भाग्यवान है? सब भाग्यवान है। तो आप अपने भाग्य पे ताली तो बजा लो, कितने भाग्यवान है। और जो भाई बहन बहुत पीछे बैठे हैं, एक तो सोफा खाली, आगे आ जाए, जो नीचे बैठ सकते हैं वो भी सामने आ जाओ, बहुत जगह है, क्योंकि पीछे बैठने में क्या आनंद है। जिनको सोफा चाहिए वो सोफे पे बैठो, हाँ आगे जो सोफा खाली है इनको भर लो। बहने भी जो आना चाहे, एक लाइन अभी भी और बन सकती है। बाबा हमारा बाप भी है, सत्य टीचर भी है और सतगुरु भी है। जो पढ़ाई में रुचि लेते हैं उनका मन उस समय क्या होता है, वो सोचते हैं हम टीचर के करीब बैठें, ज्यादा समझ में आता है ऐसा क्या होता है जब टीचर के पास होते हैं तो एकाग्रता बनी रहती है। इसलिए सोचते हैं पहली बात तो टीचर के पास बैठे हैं, दूसरी बात सब्जेक्ट जो है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वो बहन तो सब्जेक्ट अनाउंस करके शायद चली गई, एक सब्जेक्ट नहीं आपके कितने सब्जेक्ट, वो विषय कितने सुना के गई। पहला एक रस, दूसरा अचल अढ़ोल, तीसरा माना तीन लेसन आपको पढ़ने हैं, तीन लेसन। वो फिर बाद में, पहले तो है आधार मुहूर्त उदाहरण मुहूर्त तो एक हो गया, चार लेसन और फिर उसके बाद ब्रेक और उसके बाद फिर सेल्फ रियलाइजेशन कि अब हम इन चारों ही सब्जेक्ट में कहां तक पास हुए हैं। तो भाई आप देख लीजिए आपको कितना अलर्ट होके बैठना पड़ेगा। तबीयत सबकी ठीक है? कोई है थोड़ा ढीला ढाला तो जरा हाथ उठाओ, जिसकी तबीयत ठीक ना हो। सब ठीक, मौज में शुरू करें, मस्त छे। तो ईश्वरीय ज्ञान का जो विषय है यही मनुष्य के जीवन को ऊंचा बनाने वाला है। बहुत से भक्त जो बहुत अच्छे भक्त हैं वो कई बार ये कहते हैं, एक युगल है बहुत अच्छे माना समाज में भी अच्छे माने हुए, उनको हम कभी कहते हैं आप आओ बाबा के घर में, ज्ञान उनको अच्छा लगता है, बाबा का घर अच्छा लगता है, बहनों का जीवन अच्छा लगता है, लेकिन वो भाई कहता है बहन जी मैं ज्ञानी कभी नहीं बनूंगा। क्यों भाई? ज्ञान के लिए लोग तरसते हैं, वो कहता है मैं ज्ञानी नहीं बनूंगा, क्योंकि ज्ञानी को अहंकार आ जाता है और भक्त निर्माणचित रहता है, दास भाव है ना भक्ति में। तो लेकिन बाबा क्या करते हैं? बाबा हम बच्चों के जीवन में दोनों ही बातें भरते हैं। हमारे यहां अंधश्रद्धा तो नहीं लेकिन श्रद्धा जरूर है। अगर हमारी बाबा में, बाबा के ज्ञान में श्रद्धा नहीं, वो डिवोशन नहीं है, भाव नहीं है, फिर हम सूखे ज्ञानी बन जाते हैं, हमें अभिमान आता है, फिर कदम कदम पर हमारा टकराव होता है। बनना है एक रस, एक रस माना दाल और सब्जी, माताएं बहने अनुभव है ना, रस वाली दाल सब्जी बनाना तो आसान है, अगर वो आपस में मिली हुई ना हो, दाल का दाना अलग और पानी अलग, चाहे गुजराती बहुत पतली सी दाल बनाते हैं तो भी अलग अलग तो नहीं ना, मिक्स होना चाहिए। सब्जी भी कैसी होनी चाहिए, चाहे आलू रस वाला हो, मिक्स होना चाहिए। अगर मिक्स अप नहीं होता है तो चाहे टेस्टी होगा, मिर्च मसाला ठीक पड़ा है, लेकिन शक्ल देख के कहेंगे ये कैसा बना है भाई, मैं तो ऐसी दाल नहीं खाती, मैं तो ऐसा आलू की सब्जी नहीं खाती। तो एक रस क्या चाहिए? एक रस हम बाबा के बच्चों की मनोस्थिति चाहिए। बाहर से तो हम एक रस हो जाते हैं, मधुबन में आए हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, तपस्या करनी है, एक ही तपस्या के लिए आए हैं, तो सब ने देखो व्हाइट अपने कपड़े पहन लिए, अपने अपने स्थान पे तो वैरायटी पहनते होंगे है ना, क्लास में आएंगे तो व्हाइट पहन के आएंगे। तो ये बाहर से तो हम सब कुछ अपना लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर का क्या हाल है? मैं अंदर में एक रस हूं, किसी ने कुछ कह दिया, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। चलो अच्छा नहीं लगा यहां तक भी कोई बात नहीं, फिर मैंने दूसरे को जाके सुनाया, इसने बहन ने भाई ने मुझे ऐसा कहा, देखो ऐसा कहना चाहिए? इतना भी समझ नहीं है, बाबा के बच्चे हैं। अब मैंने क्या किया, पहले मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन हुआ, अब दूसरे को भी लगाया, फिर वो दूसरा भी जाके दो तीन को लगाएगा। अभी मेरा तो प्रोग्राम पता ही नहीं है कितनों को इन्फेक्शन लगाने का है, तो कहेंगे एक रस। तो इसमें एक रस नहीं बनना है, किसमें? अपसेट होने में। फटाफट एक को थोड़ी कोई फीलिंग आई, वो दो चार को सुना के अपने जैसा ही बना लेते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? पूछो अपने आप से, हम क्यों आए हैं? बाबा के बने हैं, क्यों बने हैं? वास्तव में आज की बाबा की मुरली ये सारी क्लास का जवाब है। बाबा ने कितनी बार पूछा, बच्चे मैं आया हूं किस लिए, तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूं किस लिए, पढ़ाई के द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, राजाई देता हूं, प्राप्ति हमारी देखो कितनी ऊंची है। किसी से भी पूछेंगे आप ज्ञान और योग क्यों सीखते हैं बहन जी, क्यों सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। और मेरे मन का क्या हाल चाल है, वो सदा ही हलचल में है। तो ना तो कोई डिफेक्ट हो, डिफेक्ट कौन कौन से हैं हमारे में, एक दूसरे को देखना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने कैसा पहना है, उसने कैसा पहना है, उसने क्या खाया, मैंने क्या खाया, उसको क्या मिला, मुझे क्या मिला, उसको कितना मान शान है, मुझे कितना है। तो पहला डिफेक्ट, एक दूसरे को देखना। अब जब मेरा मन और बुद्धि सारा दिन इसी में लगा रहता है तो मेरी मनोस्थिति कैसी होगी? प्रसन्न रह सकेंगे? बाबा याद आएगा? फिर कहेंगे बाबा याद तो करना चाहते हैं पर मैं क्या करूं, ये जो मेरा साथी है ना, ये है ही ऐसा, मेरे को डिस्टर्ब करता रहता है। तो पहला डिफेक्ट है, हम एक दूसरे को देखते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, कहते हैं ना बाबा, अश्वमेध यज्ञ के हम अश्व हैं, अश्व माना घोड़ा। और घोड़े को जब मैदान में लाया जाता है, चाहे टांगे के आगे लगाया जाता है, तो आपने देखा होगा घोड़े की आंखों पे वो ब्लिंकर बांध देते ताकि वो इधर उधर ना देख सके, सीधा देखे। मैंने भी ज्ञान योग के ब्लिंकर्स लगाए हैं, मुझे किसी को नहीं देखना है, कोई क्या कर रहा है करने दो। देखना है तो किसको देखना है, किसको देखना है? एक दूसरे को, ये बहन जी, ये भाई जी, बाप दादा। मुझे हर घड़ी बाबा को देखना है। दूसरा डिफेक्ट हमारा कौन सा है? एक तो डिफेक्ट हम एक दूसरे को देखते हैं, दूसरा डिफेक्ट परचिंतन। तेरी मेरी करने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है, चुगली और चबेना, मुंह लागे तो छूटे नहीं, टाइम पास मूंगफली सिंग दाना खाने लग जाओ तो फिर थोड़ा 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 खाते ही रहते हैं, छूटता नहीं। फिर कहते हैं अरे बाबा छोड़ो, ये तो बातें सुनने का, हम सुनते हैं बातें किसी की या नहीं, फालतू बातें करते हैं या नहीं करते हैं, क्या विचार है आप सबका, मुक्त हैं या करते हैं? कोई जवाब नहीं, सारी क्लास के सो गए, बताइए। मोटे रूप से तो हमारा ध्यान रहता है कि मुझे इधर उधर की बातें नहीं करनी है, तेरी मेरी नहीं करनी है, भाई बहनों की बातें नहीं करनी है। लेकिन आजकल हम सबको बीमारी कौन सी है, अकेले बैठे भी बातें करते रहते हैं सारा टाइम, मोबाइल, यहां से उठेंगे निकलते ही बाहर मोबाइल खुलेगा, कितना भी कहेंगे मौन में रहना है, प्रोग्राम देने से हम मौन में नहीं रह सकते। जब तक मेरे अंदर में ये रियलाइज न हो, ये वैराग्य न आए, मुझे अपनी मनोस्थिति एक रस रखनी है। आप कहेंगे मेरे घर में ना बूढ़े माँ बाप हैं, या मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के आई हूं, फोन किया, अब आपने जिससे बात की उसने समाचार दिया कि अपने पड़ोस का वो घर है ना, रात को उसमें चोरी हो गई या आग लग गई या किसी को हार्ट अटैक हुआ, फिर आपका मन कैसा हो जाएगा? फिर मन कैसा हो जाएगा? एक रस रहेगा? तो हम अपने आप को फालतू व्यर्थ के चिंतन से मुक्त करें। ये चिंता, मेरा बच्चा पता नहीं ठीक है या नहीं, तो आप छोड़ के क्यों आए थे, साथ लेके आते? मजबूरी थी तो आप ना आते। और किसी के तो बच्चे ठीक हैं तो भी यहां चिंता कर रहे हैं, और बच्चे क्या कहते हैं? आप बच्चों को जरा फोन करके कहिए मुझे तेरी चिंता हो रही है, तूने खाना खाया या नहीं खाया, नींद ठीक की या नहीं की, दुकान में बिजनेस में गया या नहीं गया, वो आपको क्या जवाब देता है? कहते हैं आप जहां गए हैं ना वहां अपना मन लगा के रहिए, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जिनकी हम चिंता कर रहे हैं उनको हमारी आवश्यकता नहीं, नहीं है ना? महसूस करो, मैं अपने जिन बहु बेटे बेटी पोता दोता की मैं चिंता कर रही हूं, मैं घर से निकली ना, मेरे पोते को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार था, वो फोन करके पूछ रही है बहू से अभी ठीक है, वो कहती है माँ तू जहां गई है ना वहां अपना योग लगा, वो हमारा गुरु बन जाती है। यहां सब ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, आप निश्चिंत रहना। तो बताइए चिंता करें? माताएं जो पीछे सब बैठे हो, करें चिंता? करें करें। एक रस स्थिति के लिए एक के चिंतन में रहना है। किसी का चिंतन नहीं करना, कहा गया है सिमर सिमर सुख पाओ, आज भी था ना स्लोगन में था शायद, सिमरण करो। सिमरण माना माला लेके बाबा 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 नहीं करना है, जैसे भक्ति में राम राम राम, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, वो नहीं करना है। एक एक पल बाबा का गुण गाएं। अब आप यहां आए हैं ना, वरदाता की भूमि पर आए हैं, आप कितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं उसका? बाबा कहां, बाबा कहां मैं, बाबा आपने मुझे स्वीकार किया, ये मेरा भाग्य है, हम थे इस काबिल थे हम, और बाबा ने हमें नीचे से उठा के कहां लाके बिठा दिया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारा सिमरण। पल पल हर बात के लिए शुक्रिया अदा कर। तो हमारे जो डिफेक्ट हैं, एक दूसरे की बात करना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की सुनना, ये डिफेक्ट हमारे खत्म होते जाएंगे। और कौन सा डिफेक्ट है मोटा मोटी? यूं तो बहुत से डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट या नहीं है? आप कहेंगे बहन जी आप तो हमारे डिफेक्ट ही बता रहे हो, हमारे में नहीं है। हाँ, लेकिन एक रस अवस्था के लिए ये विघन है हमारे, सबसे बड़ा विघन है हमारा बोल। हम इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं जो बात नहीं पूछो। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यहां से उठकर भी बाहर जाएंगे ना, अब आपको ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में भी बातें करेंगे, भले ज्ञान की करेंगे। आज का जो क्लास था ना, बहुत अच्छा था। क्यों ये कहना जरूरी है? क्योंकि हम चुप नहीं रह सकते। वास्तव में अगर मुझे कोई बात क्लास में अच्छी लगी तो मुझे सोचना चाहिए, ये बात जो बताई गई थी, ये बात जो शेयर की गई थी, ये इतनी बढ़िया थी, चलो अभी हमें 10 मिनट ब्रेक मिला है, मैं इसका अभ्यास करके देखूं। पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में क्या करता है? टीचर ने उसको कोई लेसन पढ़ाया, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाया, उसकी इक्वेशन बताई, थोड़ी सी ब्रेक मिली, पीरियड चेंज हुआ, वो उसको बार बार पढ़ के रट लेता है कि मुझे ये इक्वेशन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं? केवल बोल के उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए भक्ति में एक रस्म है। भक्ति में क्या कहते हैं कि आपको कोई अच्छा अनुभव होता है, कोई साक्षात्कार होता है, कुछ दिखाई दिया अपना इष्ट, तो भाई किसी को बताना नहीं, कहते हैं ना ऐसा, नहीं तो शक्ति चली जाएगी। हम भी यही करते हैं। जो बात मुझे अच्छी लगी, दो चार के साथ शेयर की, बोले, और फिर रात को पूछेंगे कौन सी बात अच्छी थी, फिर वो शिवजी का डमरू डम डम बोले, कहते हैं अरे बातें तो बहुत सी थी, अभी ध्यान में नहीं आ रही। तो जो जो बात मुझे अच्छी लग रही है, इसको गांठ बांध रहा, मैं अपनी प्रोग्रेस का एक प्लान बनाती जाऊं, मुझे ये करना है। वर्तमान समय जो हमारा पुरुषार्थ का समय है, आगे बाबा हमें कहते रहे बच्चे मौन में रहो, अव्यक्त बाबा ने भी बहुत बार कहा बच्चे मौन में रहने का प्लान बनाओ, दो दिन भी रहो, एक महीना मौन में रहो, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय जो पूरे विश्व भर की स्थितियां परिस्थितियां हैं, अब वो समय गया कि हम मौन में रहें। तो कहेंगे क्या करें बहन जी, आप तो कह रहे हो कम बोलो। अब समय है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है मन का मौन रखें। मन का मौन समझा? मान लो मैं स्वयं को ही देख रही हूं, मेरे में आलस बहुत है, अब मैं बाबा के आगे बैठी हूं और मैं कह रही हूं बाबा आप कितना हमें अच्छा बनाते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरा आलस ही मेरे लिए विघन है। मुझे तो सारा समय आलस रहता है, मैं खाना भी कम खाती हूं तो भी आलस आता है, बाबा मेरे आलस को भगा दो। इसको आप क्या कहेंगे, योग? ये योग है? ये तो योग किससे लग रहा है? किससे लगा? क्या बढ़ेगा? मुझे आलस को भगाना है तो मेरा चिंतन कौन सा चाहिए? इसको कहेंगे मन का मौन कहेंगे? मेरे अंदर तो बहुत हलचल है, मेरे अंदर आलस है, बाबा सब गुण हैं, मुझे सब एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मेरा ये जो अवगुण है ये मुझे ही मालूम है, ये मुझे पीछे खींचता है। रियलाइजेशन राइट है, मिटाना भी चाहती हूं, पर सारा समय वही वर्णन। तो अब मुझे कौन सा वर्णन करना होगा? बाबा आप हमें देवता बनाने आए हैं, मुझे देवता बनना है। देवताओं को देखो कितने अलर्ट हैं। कभी देवताओं को सोया हुआ देखा है किसी ने? है कोई चित्र किसी देवता का सोए हुए? वो विष्णु जी का दिखाते हैं शेष शैया पर, लेकिन वो सोया हुआ नहीं है। उसकी जो मुद्रा है उसको ध्यान से देखेंगे। और लक्ष्मी जी ने भी पूछा कि भगवान आप इस समय क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं अपना मनन चिंतन कर रहा हूं, विचार सागर मंथन कर रहा हूं। किसी भी देवी देवता को आप देख लीजिए, या तो वो रास कर रहे हैं, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या वरदान दे रहे हैं। बाबा आप मुझे भी तो देवता बनाने आए हैं, मैं कौन सा देवता हूं? मैं कौन सा देवता हूं? चलो आज मैं सारा दिन सबको वरदान दूं। और वरदान देने के लिए बेशक खड़े होके अपने को योग कराओ, बस थोड़ी देर मैं खड़ी होके योग करूं ताकि मुझे आलस ना आए, थोड़ी देर बैठ के योग करूं, थोड़ी देर अभ्यास करूं, मैं विश्व को साकाश दे रही। साकार में बाबा थे, दादी जानकी जी सुनाते हैं कि एक बार अचानक दादी बाबा के कमरे में गई और बाबा कैसे खड़े थे? विष्णु चतुर्भुज की तरह। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची मैं अब ये बनने वाला, दिखाते हैं ना विष्णु चतुर्भुज को, एक हाथ में क्या है शंख, वो स्वदर्शन है, और इधर कमल, तो ऐसे बाबा खड़ा है। तो बाबा ये अभ्यास करते थे ताकि वो नशा चढ़े। तो एक रस स्थिति ऐसी चीज नहीं है जो हम जाएं और कहीं से खरीद के ले आएं या लिटरेचर स्टॉल पे जाएं और लेके आएं। एक रस स्थिति माना पहले मेरा चिंतन कैसा हो, एक रस हो। जो बाबा ने कहा बच्चे स्वमान में स्थित रहो, इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं सवेरे सवेरे आज मैंने स्वमान ले लिया, मैं बाबा के आगे बैठी, मुझे संकल्प आया बाबा आप मुझे होली हंस बनाते हो, मैं एकदम पवित्र हूँ, हंस हूँ, मोती चुगने वाला हूँ, सबके गुण देखने वाला हूँ, बस बाबा के साथ हूँ। हंस माना जो क्या करता है, मोती चुगता है। मैंने 10-15 मिनट आधा घंटा ये मनन चिंतन भी किया, फिर 100 बार लिख भी लिया, मैं होली हंसू होली हंसू होली हंसू, लिखा भी, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया। और फिर सारा दिन क्या हुआ, हंस रही या बगुला भी बनती रही थोड़ा थोड़ा? तो मेरी जो सोच है, मेरा जो चिंतन है, वो एक रस एकाग्र हो। एकाग्रता का अर्थ ये नहीं मैं योग में बैठी हूं ये मेरा मन एकाग्र है, बस ये नहीं है। मेरे संकल्पों की एकाग्रता हो। सारा दिन कर्म करें, चाहे घर गृहस्थी में, 2 दिन से बाबा की मुरली में देखेंगे, आज भी बाबा ने कहा बच्चे भले घर गृहस्थी में रहो, अपना काम धंधा करो, लेकिन नष्टो मोहा तो बनना पड़ेगा ना। तो एक रस माना जिसको कोई आकर्षण नहीं, मोह माना केवल बाल बच्चों से नहीं है, मनुष्य के लिए आकर्षण है तो वो मोह कहलाता है, वही आकर्षण वस्तुओं के लिए है तो लोभ कहलाता है, वही आकर्षण वैभव के लिए है तो वो हमारा अभिमान बन जाता है। मेरी गाड़ी देखो कितनी बढ़िया, फोर व्हीलर, लेटेस्ट ब्रांड, वैभव है ना। आप देखेंगे सारे विकार इस मोह की उपज है। इसलिए गीता में भी कहा है, अर्जुन नष्टो मोह स्मृति लब्धा, 18 अध्याय भगवान को मोह नष्ट करने के लिए सुनाने पड़े। और अगर आप उन अध्याय जो गीता के हैं उनको बांट लीजिए, पहले अध्याय में है ही सोल रियलाइजेशन, आत्मा का। दादी जानकी हमारी कितना कहती है, मैं कौन, दूसरा मेरा कौन। और हम भाई बहन हंस देते हैं क्योंकि अब हमें पक्का हो गया है कि दादी यही कहेगी, मैं कौन मेरा कौन। यहां तक कि अगर कोई अज्ञानी भी आ जाए और वो हमारे मंच पर आकर ये कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न ही ये है, जिसको आज तक कोई हल नहीं कर सका कि मैं कौन हूं, जो फिलोसोफर हैं वो कहते हैं ये, तो भी हम हंस देंगे कि देखो इनको यही नहीं पता मैं कौन, हमें तो बाबा ने बता दिया मैं कौन। मैं आपको कहूं मैं कौन भाई मुझे बताओ, कहेंगे आत्मा। अब ये मैं कौन, ये केवल मैं जानती हूं, मानती हूं, या प्रैक्टिकल में हूं, मैं कौन, मुझे अनुभूति है, है अनुभूति है मैं कौन। जिनकी आंखें बंद है जरा आंखें तो खोल के बैठो, क्या कहेंगे, अनुभूति है मैं कौन, है बहने अनुभूति है मैं कौन। आप अभी करके देखिए, थोड़ा सा सीधा होके बैठो, सब सीधा होके बैठो जरा एक सेकंड, एकदम गहराई से अपने मन से पूछो। ये नहीं कहना मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो तो हमें पता है, इन्फॉर्मेशन सूचना। अपने आप से पूछो मैं कौन, मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, अब चेक करो कितनी शुद्ध, एकदम शुद्ध। बस यही संकल्प है, मैं शुद्ध आत्मा। और वो शुद्धता पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। हुआ महसूस, मैं शुद्ध आत्मा, क्या महसूस होता है बताइए, आप में से कोई भी बताए आपको क्या महसूस होता है। आप कहेंगे आगे भी ऐसे ही कहते थे मैं शुद्ध आत्मा हूं, अभी भी ऐसे ही कहा, बहन जी क्या फर्क है। बहुत फर्क है, अभी हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमारे अंदर देह अभिमान, देह भान है। ये देह, बाबा ने आज जो कहा ना, इससे डिटैच हो जाओ, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल। शुरुआत कहां से चाहिए, देह को भूलने की, ये हमें भूल ही नहीं रहा है सूक्ष्म में भी देह। और जब मुझे ये थोड़ा सा अनुभव होने लग जाएगा मैं आत्मा हूं। अभी आप जितनी देर सुन रहे हैं ना, कोशिश कीजिए, मैं आत्मा हूं। तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, गारंटी है। आपका आलस भाग जाएगा, आपकी आंख बंद हो नहीं सकती। मैं आत्मा हूं, कहां हूं आत्मा, कहां है, कहां है? और देखो छोटा सा बच्चा भी कह रहा है यहां, मतलब मेरा पूरी कॉन्शियसनेस यहां आनी चाहिए, मैं आत्मा। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूं आंखों से देख रही हूं, ये तो डाइवर्शन हो गया। कानों से सुन रही हूं, डाइवर्शन। मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान। सुई में धागा तो सबने डाला होगा कभी ना कभी, भाइयों ने भी डाला होगा। कैसे डालते हो, कैसे डालते हो? एकदम आप देखो ऐसे ना, एक आंखें यूं, जिसको नहीं दिखाई देगा वो यूं कर लेगा, थोड़ा करता है, नहीं करता, पूरा ध्यान, ऐसे पूरा ध्यान, उन्हें अपना ध्यान यहां लाइए, मैं आत्मा यहां हूं, अलर्ट होके बैठो और फिर अपना ध्यान लाइए, मैं मस्तक में विराजमान आत्मा हूं। इस तरह से बार बार अपने मन को एक संकल्प में एकाग्र करना, ये है मन का मौन। मन के मौन की बात थी ना, जब मेरा मन का मौन है तो मेरा मन ही नहीं होगा मैं यहां से कुछ बोलूं। वही बोलेंगे जिसकी बहुत जरूरत है, नहीं तो इशारे से ही काम चल जाएगा। तो अब समय वो नहीं है कि चलो हम हफ्ते में एक दिन मौन रखेंगे, चार दिन मौन रखेंगे। अब वक्त की पुकार ये है, विशेष तपस्या करने आए हैं ना आप सब मधुबन में, ये तपस्या यहां से अनुभव करके शक्ति भर के जाना कि बस अब से, आज से मेरा मन का मौन, चलते फिरते मैं शुद्ध आत्मा। हमारी मम्मा थी ना, चलती थी, हम छोटे छोटे थे, देखते थे मम्मा जा रही, कैसे जा रही है। मम्मा कभी भी जाते हुए इधर 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 ऐसे नहीं देखती थी। हम तो चलते हैं ना, वो चार को दे, कोई उधर जा रहा है अरे ओम शांति, कोई बहुत दूर है तो मम्मा एकदम सीधा अपनी मस्ती में मस्त जाती थी। तो हमें भी अभी अपनी ज्ञान की मस्ती में मस्त रहना है। अगर मैं कहूंगी ना आप छोड़िए इस मोबाइल को और क्या है व्हाट्सएप है और ये मैसेज है, आप कहेंगे ये पता नहीं बहन जी, ये तो हाइपोथेटिकल है। ठीक है, बहन जी ने कह दिया, ये छूट थोड़ी सकता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी आप मोबाइल छोड़िए, लेकिन मैं ये कहूंगी आपको कि आपको क्या करना है, अभी ज्ञान की मस्ती में मस्त रहो। बस हर घड़ी किसको देखना है, बाबा को देखना भी अभी तक मुश्किल लगता है। फिर पूछते हैं बहन जी बाबा को मधुबन में देखें, परमधाम में देखें, सूक्ष्म वतन में देखें, किसी को मत देखो, अपने को देखो पहले, मैं शुद्ध आत्मा, पहले खुद को तो देखें, हमने खुद को ही नहीं देखा है। तो एक रस स्थिति के लिए ये अपने सारे डिफेक्ट हमें दूर करने हैं, हमारे मन का चिंतन कैसा हो, हमारी दृष्टि कैसे हो। कब तक हम कहते रहेंगे दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, आखिर ये शुद्ध कब बनेगी? और जो ये हमारे डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट तो हमें मोटे मोटे दिखाई देते हैं, जैसे मैंने कहा मानो मेरे में आलस है, क्रोध आता है, निंदा चुगली सुनने का स्वभाव है, ये तो मोटा मोटा हमारे डिफेक्ट दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं डिफेक्ट और इफेक्ट दोनों से परे, इफेक्ट प्रूफ, इफेक्ट प्रूफ कैसे बनेंगे, इफेक्ट कहां आता है, इफेक्ट कहां आता है, इफेक्ट कहां आता है, फीलिंग्स, हमारी जो भाव भावनाएं हैं। आपने कुछ कह दिया, मुझे केवल बुरा नहीं लगा, बुरा लगा था तो मैंने वो पहली स्थिति थी, देखो मुझे ऐसा कह दिया, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। लेकिन जिसको हम कहते ना इसने ऐसा बोला ना, मेरे को, मैं अंदर में हर्ट हो गई, ये जो हर्ट हो रहे हैं ये है इफेक्ट, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है। और वो व्यक्ति फिर आकर के चाहे मुझे कहेगा सॉरी मेरा ये भाव नहीं था, मैंने तो हंसी में कहा था, मैंने तो आपको वैसे ही कहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं इतना हर्ट हो गई हूं। मैं उसको कहती हूं नहीं नहीं अभी रहने दो, मैं समझ गई आप क्या है, इतना हर्ट अंदर हो गया। हर्ट हम केवल बातों से नहीं हो रहे हैं, कोई दृश्य ऐसा देख लिया, सड़क पर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट देख लिया, अब मेरी फीलिंग सारी अपसेट। कई बार होता है, कई हॉस्पिटल में जाके आते हैं, कहते हैं आज वहां एक पेशेंट देखा, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ था, खून बह रहा था, अभी तो खाने को मन नहीं हो रहा। होता है कई बार, ऐसा नहीं होता है। हम कहां तक इफेक्टेड हो रहे हैं बाहर के वातावरण से, बाहर की घटनाओं से, दूसरों के बिहेवियर से, ये हमारे पर इफेक्ट आ रहा है। अपना ही रियल भाई बहन है, उसने ही कुछ लेन देन में ऊपर नीचे कर दिया, बस बात नहीं पूछो, मुझे भूला तो भूला कैसे, रो रो के बुरा हाल हो रहा है। और वो केवल टैंक नहीं लगता है उस समय, तो यहां कोई सागर ही बन जाता है, बस रोना ही रोना, रोना ही रोना। आज बाबा ने मुरली में कहा कोई शरीर भी छोड़ दे तो क्या करना चाहिए, शिव बाबा को दुख होगा, बाबा ने पूछा दुख होगा है? क्या कहा बाबा ने, नहीं होगा बाबा को दुख, बाप है हमारा, क्या कहा, जवाब क्या दिया बाबा ने, कहा बाबा तो बहुत खुश होगा, क्यों, उसका रीजन दिया है, मेरे पास आ गया इसलिए खुश होगा, बड़ा स्वार्थी है भगवान भी। बताओ जिसने मुरली ध्यान से सुनी है, राइट, बाबा ने कहा बच्चे अच्छा हुआ पुराना छी छी शरीर छोड़ा, अब उसको नया मिलेगा, हिसाब किताब चुक्त हुआ, अफसोस करने की बात नहीं है। और हमारा क्या हाल होगा, हम कहां खड़े हैं, अपने को देखें, ये इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट है। क्योंकि किसी के यहां कुछ हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अपने पास से कुछ हो जाए, जिसे बाबा कहता अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीवी मरे तो हलवा खाऊं, शक्ल ही उतर जाती है, होता है ऐसा नहीं होता, मैं कहां खड़ी हूं, मैं कितने पानी में हूं, हूं मैं इफेक्ट प्रूफ हूं। बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, हमारे वहां एक दिन एक माता आई, उससे मैंने पूछा आप दो दिन नहीं आए, क्यों नहीं आए, दीदी क्या बताऊं, मैंने कहा भी जो बात है बता दो, क्या बताऊं क्या, तो कहती है बेटा देखो बताता नहीं है, और अभी इसने इतने का घाटा खा लिया, दोस्त के संग में आ गया। मैंने कहा घाटा उसको पड़ा और शक्ल आपकी उतर रही है, मेरा तो बीपी हाई हो गया। मैंने कहा तेरा बीपी क्यों हाई हुआ है, आप देखिए, ये सब बातें आएंगी। आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, उसका अपना ठीक चल रहा है, बेटे का दूसरा है। अब बेटे के बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ और मां का बीपी हाई हो गया, राइट है, राइट है। आप सब गृहस्थी बैठे हो ना, क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम्स यही हैं। और इन सब बातों में फिर आते हुए मुझे एक रस रहना है। आपको रहना है एक रस, या आप कहेंगे नहीं ये जो समर्पित बहने हैं इनको एक रस रहना है? ये विषय हमारे लिए है या आपके लिए भी है? है आपके लिए या नहीं है? सोच लो, नोटबंदी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, अब वो क्या कहते हैं उसमें, एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा है, अब आएगा इफेक्ट हमारे पर, वो ही चर्चा हम आपस में करते रहेंगे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये गलत। इफेक्ट प्रूफ, मम्मा ने शरीर छोड़ा था, मनोहर दादी करनाल में रहती थी, उस समय नहीं पहुंच पाई, बाद में पहुंची बाबा के पास, बाबा साकार में थे, और बाबा को पास आकर मनोहर दादी ने कहा बाबा मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो बस अभी बोला ही एक शब्द मम्मा ने, बाबा ने कहा तू परचानी करने आई हो, परचानी माना मरने के बाद अफसोस करने जाते हैं ना कोई, बाबा ने कहा परचानी करने आई हो। मनोहर दादी ने जब आकर हम सब लोगों को सुनाया कि बाबा की अवस्था तो एकदम देखो, नहीं तो बाबा का तो साकार में तो राइट हैंड मम्मा थी ना, और मम्मा ने सारे यज्ञ को संभाला हुआ था, बाबा कई बार कहते थे ये मम्मा के भक्त हैं, क्योंकि उस समय तो सब मम्मा के क्लोज बहुत थे, बाबा से फिर भी थोड़ा लगता था लेकिन मम्मा के तो एकदम क्लोज थे, और ये दादियां तो मम्मा के साथ पली थी, और मनोहर दादी ने आके सुनाया बाबा तो एकदम ऐसा अवस्था में ऊपर चढ़ा हुआ, बाबा ने कहा तुम परचानी करने आई हो। माना शब्द मुंह पर लाना तो मेरी अवस्था एक रस नहीं है, तो इफेक्ट प्रूफ और डिफेक्ट प्रूफ बनेंगे तब हमारी स्थिति एक रस बन सकती है। लेकिन केवल सुनना नहीं भाई, आजकल ये भी एक फैशन हो गया है, कौन सा क्या है, सुनना, कहेंगे दीदी फलाने का क्लास नहीं हुआ, सूर्य का क्लास नहीं हुआ, आत्म का नहीं हुआ, फलाने का नहीं, सुन रहे हैं जिन जिन को भी हम जानते हैं, हम सोचते हैं फलाने का हो फलाने का हो, लेकिन मैं जितना सुन रही हूं, कौन सुना रहा है कौन नहीं सुना रहा, कौन आया कौन नहीं आया, मेरी स्थिति कहां है, तो कौन सा प्रोग्राम है, खाली सुनना है या करना है? हाँ, पीछे वालों, पीछे वाले सोचते हैं हम तो डिटैच होके सिर्फ देख रहे हैं कौन कौन करेगा, माताएं बहने करना है या सुनना है? फिर तीन दिन के बाद अपनी बहन जी को कहेंगे, रोहित उसको, रोहित भाई को कहेंगे, अरे मधुबन की भट्टी बहुत अच्छी रही, बहुत क्लासेस अच्छी हुई, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, ये नहीं करना है। आपको जो बात समझ में आई नहीं आई कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, उसके पीछे माथा मत मारिए, लेकिन जो बात समझ में आई मुझे अभी से करनी है। किस किस का मन निश्चिंत हुआ, हुआ निश्चिंत, पक्का करो अभी मैं एकदम निश्चिंत आत्मा हूं, ये भी बाबा का वरदान है ना, फिर निश्चिंत के आगे बाबा हमें कौन सा टाइटल देता है, कौन है निश्चिंत, फिर कौन है बेगमपुर के बादशाह। एक रस स्थिति में एक तरफ तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, एक तरफ है हमारी धारणा हमारा चिंतन और दूसरा पलड़ा है नशा, अगर नशा नहीं होगा तो हमें धारणा नहीं होगी, दोनों का गहरा संबंध है, नशा चाहिए। मैं निश्चिंत बेगमपुर का बादशाह हूं, संडे की मुरली याद करो, अव्यक्त बाबा की मुरली थी, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा बस तुम मुझे याद करो, बाकी सारा बोझा मुझे दे दो। किस किस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? ये बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पढ़ लेना दोबारा, नहीं तो ये मुरली। तुम्हारी ड्यूटी बस मुझे याद करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने बोझा ले लिया, अब मैं तो जाऊं रूम में चादर ओढ़ी और सो गए। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। बस तुम्हारी ड्यूटी, बाबा ने यही कहा, उसमें शब्द यही यूज किया, तुम्हारी ड्यूटी बस मुझे याद करना है, बाकी सारा काम मैं करूंगा। जिसमें बाबा ने कहा किसी को बुलाओ उसको तो आने में टाइम लगेगा, और मुझे तो एक सेकंड भी नहीं, बाबा कहा और बाबा सामने। तो एक रस के लिए मुझे नशा फुल चाहिए। मैं एकदम बेगमपुर का बादशाह हूं, मेरा साथी कौन? बाबा। जैसे वो महाभारत में दिखाते हैं ना, अर्जुन का कौन था सारथी? श्री कृष्ण। तो अब जो चलाएगा वो कहां होगा? ऊपर ना, अर्जुन ऊपर बैठा है, कृष्ण नीचे बैठा है। और जब युद्ध में चलेगा तो बोलने का थोड़ी ना टाइम है, तो उसको पांव से ही करता है कि इधर घुमा इधर घुमा। जब पूरा महाभारत पूरा हो जाता है, कृष्ण कहता है उतरो तुम नीचे। वो सोचता है नहीं कृष्ण बड़ा है ना, भगवान है, कि नहीं भगवान आप का नहीं। कृष्ण उतर के भी अपना पांव उस रथ के ऊपर रखते हैं और उसको कहते हैं पहले तू उतर। और अर्जुन उतर जाता है और उसके बाद वो रथ क्या होता है? जला हुआ, एकदम उसी समय उसमें जलता हुआ दिखाते हैं। तब अर्जुन को समझ में आता है कि ये रथ तो जल रहा था, भगवान की कृपा से सेफ था और मैं सेफ था, इसलिए भगवान कह रहा था पहले तू उतर। तब भगवान ने अपना पांव हटाया। हमें भी बाबा यही कह रहा है, अपना सारा बोझा मुझे दे दो, फिर क्या होगा? बस तुम मुझे याद करो। तो एक रस, ये तो विषय तो बहुत गहरा है, लेकिन एक रस बनना है पहले, ये लक्ष्य बनाओ। क्या भी हो अब मेरी स्थिति कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? भाई निद्रा की स्थिति नहीं चाहिए, थोड़े एक्टिव हो जाओ। एक रस स्थिति, मैं चाहे सेंटर पर गई, एक को दीदी ने टोली दी और मुझे नहीं दी। जो काम मैं कर सकती थी मुझे नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। परिवार में गए, मां बाप का, भाई बहन का, चाचा मामा का, पति पत्नी का व्यवहार किसी का भी थोड़ा सा मेरे से उल्टा हुआ, दादी जानकी कहती है लेट गो, बहुत अच्छा है मुझे किसी ने नहीं पूछा। आएगी ना अगस्त में राखी आएगी, बहने जाएंगी भाई को राखी बांधने, अब भाई ने उसको थोड़ा कुछ हल्का दे दिया, कहेगी मेरी भाभी आई है ना, जब से तब से मेरा भाई मुझे कम देता है, नहीं तो मेरा भाई बहुत अच्छा है। अरे नहीं दिया, बहुत अच्छा, उसको कहो शुक्रिया, हमारा लेन देन का हिसाब पूरा हुआ, अब तो हमें हिसाब किताब चुपचुप करके ऊपर चलना है। है इतनी खुशी, है इतना नशा, है अपने को फुल नशा चढ़ा के रख, मेरे साथ मेरा साथी बाबा है, तब हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी, नहीं तो डामाडोल, आज खुश कल नहीं। फिर हमारे साथी पूछ रहे हैं भाई क्या बात है, आज तुम्हारी शक्ल थोड़ी उतरी हुई लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना? होना ये चाहिए, चाहे तबीयत ठीक नहीं है, देखने वाला कह रहे तुम्हारी तो तबीयत ठीक लग रही है, तुम कहते हो टेम्परेचर है। इतनी खुशी, इतना नशा हो तब हम अचल अडोल बनेंगे, और तब हम क्या बनेंगे? दूसरों के लिए उदाहरण, एग्जाम्पल पेश करेंगे ना। तो एक रस स्थिति बना के यहाँ से जाना है, यही अभी मुझे मनन चिंतन करना है, यही वरदान बाबा से लेना है। ठीक है, तो अब आपका टाइम हो गया है थोड़ा उठने का, एक ब्रेक। हाँ, फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप जब वापिस आएंगे तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे का करेंगे। अभी एक सेकंड बाबा की याद में बैठो, अलर्ट होके बैठो, एक एक सेकंड अलर्ट, अपना एक एक सेकंड सफल करो।
सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है।
सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है।
प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा,
जगाता